नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एन से आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है पक्ष विपक्ष में फर्जी जानकारियों फैलाने से किसका भला। सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाओं का अंबार है। इंटरनेट के आने से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि वीडियो फ्रेमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 मिनट में 500 घंटे तक देखने लायक सामग्री अपलोड की जा रही है। वही व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजर पर 7 करोड़ मैसेज और 19 करोड़ ईमेल हर मिनट भेजे जा रहे हैं। यह आंकड़े इंटरनेट के कुछ गिने चुने माध्यम के हैं। पूरे इंटरनेट में इसके अलावा भी बहुत सारी सामग्री अलग अलग माध्यमों से अपलोड की जाती हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी नमस्कार योगेश भाई।
सर, फर्जी जानकारियों से देश का क्या भला।
ये जो फर्जी जानकारियां चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो नाना प्रकार के सोशल साइट बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, इन फर्जी जानकारियां न केवल देश को बल्कि देश के जनता को भी दुविधा में डाल रही है और उनको सच्चाइयों से दूर रख रही है। सवाल यह है कि इनको चलाने वाले जो लोग हैं उनको अनुमति कौन दे रहा है? एक तरफ कहा जाता है कि कोई भी न्यूज़ डाली जाती है, कोई भी सूचना डाला जाता है तो जो चलाने वाले ऑपरेटर होते हैं उनके माध्यम से गुजरता है, तो ये ऑपरेटर कर क्या रहे हैं और फर्जी आईडी कैसे बन रही है? सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि फर्जी आईडी कैसे बन रही है। आप एक तरफ लोगों के आई कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, वोटर कार्ड मांगते हैं, उसके बाद भी फर्जी आईडिया बन जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये संचालन करने वाले लोगों की गलती है या संचालन करने वाले लोगों की मिलीभगत है। इससे देश का भला नहीं होने वाला है, बल्कि देश के पास जो अच्छी सूचनाएं जानी चाहिए उन सूचनाओं पे भी अविश्वास खड़ा हो रहा है। आप देखेंगे कि जब सोशल साइट चलने लगा तो लोगों के मन में दिल में बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारी बात जो नहीं पहुंच रही थी अब वो बात हमारी पहुंचेगी जनता तक, समाज तक। परंतु आज तो सोशल साइट के न्यूज भी जो आ रहे हैं वो भी विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, अब लोग उससे भी उदासीन हो रहे हैं। तो एक प्रकार से जितने भी जनता के प्लेटफॉर्म है उसको कमजोर करने का यह तरीका है और यह एक बाजारवाद का सोचा समझा चाल है जो पूरी तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से चलाया जा रहा है कि लोगों को सच्ची जानकारी न दिया जाए, कोई भी जानकारी आए तो उसमें विश्वसनीयता न रखी जाए। अब आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं सोशल साइटों पे, फेसबुक पे, परंतु अब उनकी भी विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त हो रही है, अब लोग उससे भी दूर हो रहे हैं, तो आम जनता जाएगी कहाँ? तो यह एक पूंजीवाद का मिला जुला खेल है जो आम जनता को हर तरीके से तोड़ना चाहती है, आम जनता के हर प्लेटफॉर्म को समाप्त कर देना चाहती है। तो इस पर तो एक सख्त जो न्यूज सख्त जो कानून बन रहा था वो बनना चाहिए और उसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो इससे देश की भला होने वाला नहीं है, बशर्ते कि इससे विश्वसनीयता खत्म हो।
जी सर, देश के 76 करोड़ जनता इंटरनेट का एक्टिव यूजर है और फेक न्यूज सहित गलत जानकारियों के घेरों में है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देश की 76 करोड़ जो जनता आप कह रहे हैं कि फेसबुक, सोशल साइट्स और मोबाइल से जुड़ी हुई है,
जी
यह एक प्रकार की ताकत भी है योगेश भाई, कि
जी
अपनी बात सेकेंडों के अंदर हम जहां पहुंचाना चाहते थे, जिस ऑफिस में पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंच जाती थी। परंतु आज जो इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, वो गलत तरीके से जो इसको परोसा जा रहा है, यह कहीं ना कहीं जनता के अधिकार और जनता के जो मूलभूत मांगे उसको कमजोर करने का तरीका है। आप देखे होंगे कि सोशल साइट्स के माध्यम से लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय, तमाम नौकरशाही के कार्यालय, तमाम जगह अपनी सूचनाएं भेज देते थे और बड़ा तत्काल कार्रवाई भी होने लगता था, समाज का भी उस पर बहुत बड़ा एक फीडबैक मिलने लगता था, पुनरावलोकन होने लगता था। परंतु अब यह जो न्यूज फेक न्यूज इस पे जो चलाई जा रही है, डिफेक किया जा रहा है, उसके माध्यम से अब अच्छी सूचनाएं भी लोग पढ़ने से कतराने लगे, अरे यार ये गलत होगा, छोड़ो इससे जाने दो, कोई मतलब नहीं निकलता है, और एक प्रकार से भ्रामक जानकारियां पैदा की जा रही है। तो हमारा यही कहना है कि जो बार बार भ्रामक जानकारियां पैदा की जा रही है इसको चेक किया जाए कि कौन से लोग है जो भ्रामक जानकारियां दे रहे, और यह सारी बातें सोशल साइट चलान संचालन करने वाले जो कंपनियां उनको पता है, परंतु यह कंपनियां भी कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई है, साठगांठ करके चलवा रही है। इस पे रोक लगाना चाहिए, तब जाकर के इसकी विश्वसनीयता होगी, और नहीं तो जो विश्वसनीयता सोशल साइटों की है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
जी सर। सर आप भी इंटरनेट यूज करते होंगे, आप भी उपभोक्ता है इंटरनेट के, क्या सर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी चीज को देखते हैं सुनते हैं तो क्या वे आपको अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही या उसी टॉपिक पर कुछ जानकारियां सेम टू सेम शेयर हो जाती है दूसरे प्लेटफॉर्मों पर, ये क्या है? और ऐसी चीजें लोगों को लुभाने के लिए और इंटरनेट का अधिक यूज करने के लिए ये किस तरीके से ये खेल होता है और इससे एक यूजर का क्या फायदा है?
देखिए, इसमें तीन चार प्रकार की बातें हैं योगेश भाई। पहला कि आपने सही कहा कि एक लोक लुभावन है, लोगों को प्रलोभित किया जाता है। अब आप देखिए कि जो लोग 76 करोड़ जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, वो दिन भर नेट में लगे हैं। इससे डाटा कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, और डाटा कंपनियां भी जानबूझ करके परोसती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अभी जो ये ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है
जी
मोबाइलों पे, फ्लिपकार्ट है, मेसियो है, स्नैपडील है, बहुत सारे साइट है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर पे जाकर के आप देख रहे हैं कि हमको जूता लेना है, और एक बार आप जूता का डाल दिए तो आपकी मानसिकता को भाप लेते हैं, और आप चाहे मेसियो पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, स्नैपडील पे जाइए, सभी लोग आपको नाना प्रकार के जूता दिखाने लगते हैं। तो ग्राहक उसमें फंस जाता है कि इसको देखूं कि उसको देखूं कि उसको देखूं, और उस प्रकार से दिन भर अपना वो डाटा खत्म करता रहता है, और डाटा अतिरिक्त भी लगने लगा है। आज तो 2 GB डाटा भी लोगों को कम पड़ने लगा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा सूचना के स्रोत, सूचना के स्रोत कई होने चाहिए, और एक सूचना को कई एंगल से देखने की भी आज जरूरत है। यह एक अच्छी बात है कि सूचना के कई स्रोत होते हैं, उस पर जाना चाहिए। लेकिन सूचनाओं को भ्रामक बनाने का जो खेल खेला जा रहा है, यह डाटा कंपनियों के माध्यम से और डाटा कंपनियों द्वारा पाले गए लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। उन पे इस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो यह नहीं रोका जा सकता। आप अगर अच्छी जानकारी नहीं देंगे, आप गलत न्यूज दे देंगे, आप बताएंगे नहीं, उसमें फ्रॉड का काम होने लगेगा, तो कौन सोशल साइट चलाएगा? तो आने वाले दिन में डाटा कंपनियों की अभी तो विश्वसनीयता थोड़ी सी बची हुई है, आने वाले दिन में विश्वसनीयता खत्म होने लगेगी और लोग उससे दूर होने लगेंगे। तो ये डाटा कंपनियों को भी चाहिए कि अपनी बात को सही तरीके से रखे और लोगों को प्रलोभन में न फंसे। तीसरा कि समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। समाज दिन भर इसी पे काम क्यों करते रहते, खास करके युवा वर्ग? भाई एक समय आप बना लीजिए कि हमको इतने देर काम करना है, आप दिन भर इसी पे लगे रहते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये सूचना गलत है, तो आप उसको समाचार पत्रों से पढ़ लीजिए। आज के दौर में भी समाचार पत्र विश्वसनीय है, वो जैसे भी छपते हो अलग बात है, लेकिन समाचार पत्रों की विश्वसनीयता समाप्त नहीं हुई है। तो जिनको सूचना के प्रमाणिकता चाहिए वो समाचार पत्रों से ले ले, और इसके साथ साथ लोगों को अपनी पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर बात को सोशल साइट पे, हर बात को गूगल पे जाकर के सर्च करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तीसरी जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ योगेश भाई, कि आज आप देख लीजिए कि हर शैक्षणिक जो संस्थाएं है, वह स्टूडेंट को चाहे विद्यार्थी को शोधार्थी को यह कह रही कि आप गूगल पे चले जाइए, आप नेट पे जाके ढूंढ लो, यूट्यूब पे जाके करो। यह क्यों कह रहे भाई? जब यह नहीं था तो क्या शोध नहीं हो रहे थे क्या? यह नहीं था तो पढ़ाई नहीं हो रहे थे क्या? लेकिन आजकल लोग लाइब्रेरी में क्यों नहीं भेज रहे, पुस्तकालय में क्यों नहीं भेज रहे, जहां से सूचनाओं के स्रोत है वहां क्यों नहीं भेज रहे? तो यह समाज को भी अपनी नैतिक दायित्व को पूरा करना चाहिए, ताकि इस फेक न्यूजों से बचा जा सके और इसको स्वच्छ बनाया जा सके, पारदर्शी बनाया जा सके।
जी सर। सर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अगर इस तरीके की फेक न्यूज, अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पर है अगर यह आते हैं या राजनीतिक पार्टियां इसका यूज करती हैं, तो सर इसमें राजनीति में एक सत्तारूढ़ कोई दल हो अगर उसमें कितना प्रभाव पड़ता है या कितना इम्पेक्ट पड़ता है राजनीति पर, और इसका जनता में क्या मैसेज जा रहा है?
देखिए, सोशल साइट पे राजनीति एक अलग बात हो गई और सोशल साइट पे काम करना अलग बात हो गया।
जी।
राजनीति का मतलब होता है न्याय की स्थापना करना, अन्याय को दूर करना, समाज में पीड़ा को दूर करना। सोशल साइट के माध्यम से आप अपनी बात को उठा सकते हैं, लेकिन दूर नहीं कर सकते। आज फेक न्यूज कौन डाल रहा है? यदि पक्ष के लोग फेक न्यूज डाल रहे हैं, तो विपक्ष वाले भी काउंटर में फेक न्यूज डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष वाले सही ही लिख रहे हैं, और पक्ष के लोगों की तो आज धारणा ही हो गई है कि विपक्ष के लोगों को फंसा के रखो, वो तो गुगली फेंक रहे क्या फंसी है। तो जितना पक्ष आज फेक न्यूज डाल रहा है, उतना ही फेक न्यूज विपक्ष के लोग भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। और यह दोनों का मकसद ही हो गया भाई, पॉलिटिकली बदलाव नहीं है, इन दोनों का मकसद है कि किसी भी प्रकार एन के प्रकरण हम सत्ता में आ जाए, हमें कुर्सी मिल जाए, हमें मंत्री पद मिल जाए, ताकि हम अधिक से अधिक पैसे कमा सके, ताकि हमारी कमाई का सूत्र बढ़ जाए। इनके सत्ता में आने का मतलब व्यवस्था परिवर्तन नहीं, इनके सत्ता में आने का मतलब है कि अपने व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत पोजीशन में इजाफा होना चाहिए। तो ये जान बूझ करके एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे और एक दूसरे का काउंटर करने में फेक का फेक से जवाब दे रहे। यह नहीं है कि सामने वाला अगर फेक न्यूज डाल रहा है तो सत्यता के साथ प्रमाणित करके डाल रहे, नहीं, यह भी उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसको जनता समझ रही है, और जनता अब इस माध्यमों से जाकर के राजनीति नहीं कर रही, जनता में चेतना आ रहा है, लेकिन अंधभक्ति जनता से दूर नहीं हो रही है। और अंधभक्त केवल पक्ष के पास ही नहीं है, अंधभक्त अगर पक्ष के पास है तो अंधभक्त विपक्ष के पास भी है। तो एक तरीके से पक्ष और विपक्ष अंधभक्तों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है अपने अपने गोल में, ताकि लोग जितने अंधभक्त होंगे उनको सत्ता करने में उतना आसान होगा। तो आज सोशल साइट अंधभक्त बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका चल गया है। अब मैं आपको एक न्यूज बता देता हूँ योगेश भाई, कल गांधी जी की पुण्य तिथि थी, सरकार ने ठीक है शहीद दिवस घोषित किया है, अच्छी बात है, परंतु कल तो स्पेशल गांधी जी का दिन था, कल गांधी जी को गोली मारी गई थी, परंतु कल सोशल साइट चलाने वाले कई प्रकार के जो लोग चला रहे थे, हमने देखा वो गांधी जी का फोटो न डाल करके बाकी शहीदों का फोटो डाल रहे थे। हम लोग तो सब शहीदों को शहीद मानते हैं भाई, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़े हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, तो शहीदों में अब तुलना कैसे होने लगी। तो कल लोगों ने गांधी के फोटो न लगा करके जो बाकी शहीद हुए दूसरे दिन उन लोगों का फोटो लगा रहे थे। भाई उनके दिन के दिन लगाया जाता, अच्छी बात है, और सबसे सारा देश सम्मान करता है शहीदों का। 23 मार्च को खुद हम लोग बहुत बढ़िया से मनाते हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का, और हम तो जब से पढ़ रहे तब से हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं और मनाते आ रहे हैं। पूरा देश भगत सिंह के सामने नमन होता है, पूरा देश राजगुरु सुखदेव को मानता है, पूरा देश चंद्रशेखर आजाद को मानता है, सुभाष चंद्र बोस को मानता है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनमें अंतर करता है। परंतु एक नई जमाते पैदा की गई है जो गांधी के पुण्य तिथि के दिन बाकी लोगों को तो फोटो डाली लेकिन गांधी का फोटो नहीं डाल रही थी। तो क्या यह मोबाइल ऑपरेट करने वाली कंपनियों को नहीं पता है? क्या ये सत्ता को नहीं पता है? क्या ये विपक्ष को नहीं पता है? तो कुल मिलाकर के एक मिला जुला षड्यंत्र, एक मिला जुला खेल है योगेश भाई, कि जनता को किस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाए और जनता को किस प्रकार से अपने पक्ष में किया जाए, जनता को किस प्रकार से अच्छी सूचनाओं से दूर रखा जाए, अच्छी जानकारी से दूर रखा जाए और सत्यता से दूर रखा जाए। तो एक प्रकार से यह अंधभक्ति पैदा करने का तरीका चल रहा है, इसमें जनता को स्वतः चेतनशील होने की आवश्यकता है।
जी सर। सर अगर इंटरनेट की बात और करें तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोगों की जो इंटरनेट के द्वारा जो आजकल बहुत बड़ी ठगी देखी जाती है, ये कितनी घातक हो रही है सर? अभी जो 76 करोड़ जनता यूज करती है इंटरनेट को और अन्य प्लेटफॉर्मों को, और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, और क्या ऐसा लगता है कि इन फेक न्यूजों को रोकने के लिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए या नहीं?
फेक न्यूज को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए जो उसमें छेद करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए तो सख्त नियम की जरूरत है। और जो लोग ये फैला रहे, गलत अफवाहें फैला रहे या धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आप देख लीजिए कि अभी एक ठंडी का सीजन चल रहा है, इसमें कपड़े बेचने वालों ने मोबाइल पे सेल लगाए और कई लोगों के पैसे ले लिए, और पैसे लेने के बाद ना अपना पता दिए, ना कुछ दिए, ना उनको सामान भेजे। कई लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहा है कि उनके बैंक का अकाउंट, आधार कार्ड मांग करके पैसे निकाल ले रहे सब। तो आखिर यह साइबर सिक्योरिटी के अंतर आता है, तो जो अपना विभाग है उसको पता क्यों नहीं चल रहा है? आखिर ये तो करने वाले देश के ही लोग होंगे ना कहीं से, किसी कोने से कर रहे होंगे। तो यह तो सूचना, जिसे अपन कहते हैं कि अपन जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड रहते हैं कंपनियों के पास, तो क्या यह रिकॉर्ड नहीं होगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे झूठ सच किया जा रहा है, कैसे लोगों को धोखा दिया जा रहा है? तो कुल मिला करके यह डाटा कंपनियों का, मोबाइल कंपनियों का और इनको ऑपरेट करने वाले लोगों की एक चाल है। और साइबर सिक्योरिटी बनाता कौन है योगेश भाई? सरकार ही तो बनाएगी ना। सरकार किसकी है? सरकार भी तो पैसे वालों की है। मोबाइल कंपनियां सरकार को करोड़ रुपया दे रही है, या ऑनलाइन डाटा चलाने वाली कंपनियां करोड़ रुपया दे रही है, सरकार उनके खिलाफ क्यों काम करेगी? सरकार तो आपके खिलाफ काम करेगी, सरकार तो सत्य बोलने वालों के खिलाफ काम करेगी, सरकार तो समाज में सत्याग्रह लाने वालों के खिलाफ काम कर रही है। तो यह कुल मिलाकर के यह बाजारवाद और पूंजीवाद का एक मिला जुला खेल है, जो जनता के अधिकारों को लूट करके जनता को सिर्फ और सिर्फ शोषण में फंसा के रखना चाह रही है। उसको व्यवस्था निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर पक्ष विपक्ष में फर्जी जानकारी फैलाने से किसका भला, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
ऐसे कार्यक्रम सुनने के लिए सुनते रहे मोबाइल
पाछिया है क्या?